यहां तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादे पर हक के पूरा होने का वक्त करीब आन लगेगा, तो यकीन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जिन्होंने कुफर किया था, और कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम उस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे बल्कि हम खताकार थे। सूरत का आगाज याद आ रहा है, बिल्कुल इसी मौजू पे सूरत शुरू हुई थी। गफलतों से निकले हुए लोगों पे जब अजाब आता है तो फरिश्ते कहते हैं चलो उन्हीं घरों में जिनमें आराम से पड़े थे, तो वो क्या कहते हैं, हम जालिम थे। यहां भी यही बात आ गई, का इन्नकुम मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो, जहन्नुम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते, अब सबको हमेशा इसी में रहना है, वहां वो फुंकारे मारेंगे। सोचिए गर्मी की फुंकार, बुखार हो किसी को और वो फुक रहा हो, जहन्नुम की गर्मी से फुंकारे मारेंगे, और हाल ये होगा कि इसमें कान पड़ी आवाज सुनाई ना देगी। जहन्नुम में बहुत शोर होगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे घबराएंगे। हाँ मगर वो लोग इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा तो वो यकीनन इससे दूर रखे जाएंगे, इसकी सरसराहट तक न सुनेंगे, और वो हमेशा हमेशा अपनी मन भाती चीजों के दरमियान रहेंगे। मन भाती चीजों में रहने की जगह जन्नत है, ये दुनिया नहीं। जब दुनिया में हम मन भाती चीजें या अपनी पसंदीदा चीजों में रहते हैं ना, तो समटाइम गाफिल हो जाते हैं। वो इंतहाई घबराहट का वक्त इनको जरा परेशान ना करेगा। नेक लोगों को क्यामत की घबराहटें भी घबराएंगी नहीं, फिक्र ना करें। आज नेकियां कर लें, अच्छे काम कर लें, अपने हिस्से का काम करें, कल अल्लाह आपको सुकून ही सुकून देगा। और मलाइका भड़क कर इनको हाथों हाथ लेंगे, वेलकम करेंगे। जैसे एक दुल्हन आती है ना, तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, कोई दुपट्टा पकड़ता है, कोई लहंगा पकड़ता है, कोई उसके जूते पकड़ता है, और फिर उसको क्या कहेंगे, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तूअदून, ये है वो दिन, ये आज तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। शादी का दिन दुल्हन का दिन होता है ना, जितने लोग उस दिन नखरे देखते हैं, आम दिनों में देखते खाना तक खिला रहे होते हैं, और दुल्हन जितनी नकाहत की मारी उस दिन दिखती है, ऐसे लगता है चलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, और चलती भी नहीं, और ऐसे पकड़ पकड़ के बीमारों की तरह उठाते हैं, पता नहीं वो क्या जाते शादी वाले दिन लड़कियों को, सिर्फ मॉडल, सिर्फ बस देखें अच्छे लग रहे हैं, अदाएं नखरे नॉर्मल रहे, नेचुरल रहे, अपने आप को ठीक रखें, फिर इसी में नमाज कौन पढ़े, कौन अपने आप को मुश्किलात में डाले, तो अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्ते तुम्हें वेलकम करेंगे उस दिन, वो कहेंगे ये तुम्हारा दिन, इट्स योर डे। जैसे आप अपने बच्चे को, आज मेरे बच्चे का दिन है, जो कहोगे वो करूंगी, तो दुनिया आपकी रब चाहिए तो आखिरत आप चाहिए। मान लीजिए अब क्या चाहिए, दुनिया रब चाहिए आखरत मन चाही, तो जो कहता है दुनिया मन चाही तो फिर आखरत फिर रब चाही, और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। वो दिन जबकि हम आसमान को यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तूमार में और आग लपेट दिए जाते हैं, जिस तरह पहले हमने तखलीक की इब्तदा की थी इसी तरह हम इसको दोहराएंगे। ये एक वादा है हमारे जिम्मे और ये काम बहरहाल हमें करना है, और जबूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इस आयत को आपने गौर से सुना कि हम इस जमीन के वारिस अपने नेक बंदों को करेंगे। उम्मत वसत के लिए इसमें फिर एक मैसेज आ गया, आखिरी वक्त में दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, जितना जल्दी इस्लाम ले आएंगे ये गलबा आसान हो जाएगा। आखिरी अंजाम जो होता है ना वो हक का अच्छा होता है। दुनिया में आपने देखा हक दबाव है, बातिल फैल रहा है, चारों तरफ लग रहे हैं गलत गलत खराब, नाफरमानियां गुना करप्शन, आखिरी अंजाम मुसलमानों का है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे पहले से उम्मीद दिला दी कि जिस दिन तुम सही मानों में अल्लाह के बंदे बन जाओगे, हम दुनिया की सारी सल्तनत तुम्हें दे देंगे। और इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए, ऐ नबी हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा रब बस एक रब है, फिर क्या तुम सरे इताअत झुकाते हो, अगर वो मुंह फेर लें तो कह दो कि मैंने अलल एलान क्या कर दिया, मैंने अलल एलान तुमको खबरदार कर दिया, अब मैं ये नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर, अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बुलंद आवाज से कही जाती हैं और वो भी जिनको तुम छुपा रहे हो, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फितना है और तुम्हें एक वक्त में मालूम हो जाएगा क्या, और तुम्हें एक खास वक्त तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा है, मेरे रब हक के साथ फैसला कर दे। लोगों, जो बातें तुम बनाते हो इनके मुकाबले में हमारा रब रहमान ही हमारे लिए मदद का सहारा है। तो यहाँ आपको एक आयत बड़ी खूबसूरत दिखी होगी, और वो क्या कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत कैसे थे, इसको बात कीजिए। और आज वो लोग जो आपको न जाने क्या कुछ कहते हैं, उनकी गलत फहमी दूर कीजिए। हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहमत थे। पहली बात है कि आपके जरिए इंसानियत अल्लाह से मुतआरफ हुई। फिर दूसरी बात है, आपने इंसानियत को शरीयत की सूरत में वो लॉस दिलवाए कि जिस पे अमल करने के बाद दुनिया में रहमतें होती हैं। इस्लाम के आने से पहले मक्का के जो हालात थे उसको अल्लाह के नबी की खूबसूरत तालीमात ने कैसे बदल दिया। बात बात पे झगड़ते, वो कहते हैं ना, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, फिरका वारियती, बच्चियों को जिबा करते थे, अल्लाह की रहमत से ये सब दूर हुआ। और आप अगर अल्लाह के नबी की खूबियों को एक जगह जमा करें ना, आप में नरमी थी, सब्र था, शर्मो हया थी, गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत करते थे, जिम्मेदारी का एहसास था, मजाह था आपकी तबीयत में, हाजिर दिमाग थे, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे, पीपल पर्सन थे अल्लाह के नबी। नाराजगी होती तो ज्यादा तूल ना देते, किसी से खुश होते तो बहुत ज्यादा ऐसे ना हो जाते कि बेतकल्लुफी में अगला आपको कुछ कह दे। फिर हर रिश्ते से आपने मामला सिखाया, जुल्म से बचना सिखाया, झूठ से बचना सिखाया, गुस्सा आपको आता था, बिल्कुल आता था, खिलाफे फितरत चीजों को देखकर, खिलाफे शरीयत चीजों को देखकर, डिसिप्लिन को टूटता देखकर आपको गुस्सा आता था, शिर्क करता देखकर लोगों को गुस्सा आता था, तकब्बुर आप में नहीं था, हसद आप में नहीं था। आज जरा इतनी खूबियों को जमा करके किरदार बनाए तो क्या वो रहमत नहीं बनेगा इंसानियत के लिए? आज अगर मैं और आप ऐसे बन जाएं तो इंसानियत खुद हमें कहेगी कि आप हमारे लिए रहमत हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस नबी का इतना खूबसूरत तारुफ है, फिर वो आपको मुझे भी लोगों के लिए इसी तरह से बना दे। आइए आखिरी आयतों की तिलावत सुनते हैं और साथ ही साथ दुआ करेंगे कि हमारे अंदर भी ये सारी खूबियां आ जाएं जो अल्लाह के नबी सल्लम के अंदर थी। आयत नंबर 94 से आउज़ बिल्ला पढ़े। सब पढ़िए, आपके लिए लिखवाइए और ऊंची पढ़िए। फ्रेश हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का कुरान जितना पढ़े सुने उतनी एनर्जी ज्यादा। अगली सूरत बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा आपको इसका खुलासा दे देती हूँ। सूरत हज, आप देखिए कि फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में क्या क्या आता है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ना नमाज के नाम की कोई सूरत है कुरान में, ना रोजे की और ना किसी और की, लेकिन हज की सूरत क्यों है? पहली बात है, इसकी दो वजूहात है। हज असल में यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया से मुसलमान एक जगह पे जमा होते हैं, काले, गोरे और मुख्तलिफ तरह के, और आप देखें तो वहाँ जाकर आपको अंदाज़ा होता है कि इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग नमाज़ पढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा फिक्र लग जाती है कि हमारी अपनी भी नमाज़ कबूल होती है कि नहीं। इसके बरक्स हम अपने मुल्क में किसी को ज़रा सा हाथ ऊपर नीचे करने देखें तो हम मशकूक हो जाते हैं कि उसकी इबादत कबूल होगी कि नहीं होगी, फिर रंग नस्ल का फर्क मिटता है। तो जो हज है ना, ये असल में उम्मत को साबित करता है। इस साल चूंकि उम्मत वसत की बात थी, इसलिए इस मौजू पे बात करनी लाजमी है कि जब हम एक दफा हज करके आ जाएं, या अगर हमें उम्मत का तसव्वुर देखना है तो हम हज उमरा करें और वहां जाके देखिए कि इतने इख्तलाफात के बावजूद लोग एक ही घर में तवाफ कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है कि ऑपोजिट नहीं जाता, इधर से नहीं उधर नहीं है। आज पूरी दुनिया में यही नक्शा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एक शख्स थे, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं, बल्कि इसका कहीं प्रेजेंटेशन है हमारे पास, क्लासेस में दिखाते हैं। तो वो प्रीच कर रहे थे किसी नॉन मुस्लिम को, और उन्होंने क्या किया तो उससे पूछा कि ये बताओ कि अगर एक जगह पे मिसाल है कि 2 लाख लोग हो और उन सबको ऑर्गेनाइज करना हो तो सबको सीधी लाइनों में खड़ा करना कितना मुश्किल होगा, कितनी देर लगेगी? तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो उसने कहा कि दूसरी भी एक और चीज़ है, और वो क्या है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे की जुबान भी नहीं जानते, डिफरेंट कल्चर उससे। तो उन्होंने कहा फिर तो ये मुमकिन ही नहीं, और अगर किया तो क्या होगा, शायद 8-10 घंटे लग जाए। इसके बाद उन्होंने उनको फिर खाना कबाब का क्लिप दिखाया कि सब अपना काम करें, कोई इधर है कोई उधर है, इतने में अजान होती है या इकामा होती है और वो सब लोग सीधी सीधी लाइनों में खड़े होते हैं, और जो ही नमाज पढ़ी हुई तो सिर्फ इकामत के दौरान वो लाइनें सीधी थी। ये मंजर देखा तो वो शख्स मुसलमान हो गया। ये रोल मॉडल मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिखा दे कि हम एक कौम है। फिर दूसरी बात है कि सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हज क़यामत को भी साबित करता है। इसका अंदाज़ आपको अब सूरत के शुरू से ही दिखेगा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्सा'ति शय्युन अज़ीम। लोगो अपने रब के गजब से बचो, हकीकत यह कि क्यामत का जलजला बड़ी हौलनाक चीज है, छोटी चीज नहीं, टेक इट सीरियस। जलजला आएगा इतना बड़ा, दुनिया में एक जगह जलजला आता है दूसरी जगह से एड आ जाती है, उस दिन कौन किसको एड देगा, हर तरफ ही जलजले होंगे और उसकी शिद्दत कितनी ज्यादा होगी। यौमतरु नहा, जिस रोज तुम देखोगे हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हर हामिला का हमल गिर जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब और बच्चों की जरूरत नहीं रही, क्यामत आ गई। और प्रेग्नेंट औरत बहुत ज्यादा सिंबल होती है केयरफुलनेस का, चलती है तो सोच के चलती है, देखती है सोचती है, और बच्चा पेट में हो तो माँ उससे कितना प्यार कर रही होती है और उसके लिए कितना अपना ख्याल रखती है। क्यामत का हंगामा माओं के दिलों से ये जज्बात तक निकाल देगा। वह तरन्ना सुकारा व हम भी सुकारा, और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। तो भी ये सब बौखलाए हुए क्यों फिर रहे हैं? वलाकिन अज़ाब अल्लाह ही शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। आप देखिए क़यामत या मौत और हज को जमा करके देखें। हज की सूरत में इंसान अपने प्यारों को छोड़ के घर से निकलता है, मौत की सूरत में भी घर से निकलेंगे। यहाँ भी निकलते वक्त गुसल किया जाता है, वहां भी गुसल दिया जाता है, इधर भी अमूमन रिश्तेदार जमा होते हैं सी ऑफ करने के लिए, उधर भी हमारी मौत की खबर सुनकर वो सारे आ जाएंगे जो जिंदगी में हमें कई कई साल से नहीं थे मिल रहे, क्योंकि रिश्तेदारियों में तो फिर आना ही पड़ता है। और कई रूठे हुए भी आ जाएंगे। हज पे जाने से पहले अक्सर लोग रूठे हुए को मनाते हैं। इसी तरह जब हम दुनिया से जाएंगे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की सुलह होंगी कि अब आ जाइए, आखिरी दीदार कर लीजिए, फिर शक्ल आपको ये नहीं दिखेगी। फिर आप देखिए लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, कभी फूल डालते हैं तो मरने वाले पे भी लोग फूल डालते हैं जब उसकी मैयत है। फिर एक ऐसा लम्हा आता है कि हाजी जो होता है वो अकेला हो जाता है, सब चले गए, और वो ऐसी लाउंज में दाखिल कर दिया जाता है कि उसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह मरने के वक्त हम सबको भी एक ऐसा वक्त आएगा कि हम अपनी बरजख में चले जाएंगे। जहाज में भी आप अकेले हैं, उधर कब्र में आप तन्हा होंगे। इधर जहाज से आप निकलते हैं तो आपके सामने एक नई दुनिया है। इसी तरह मरने वाला जब इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके आगे एक नई दुनिया है। वल्लाह ही अगर शऊर के साथ एक हज या उमरा किया होता हमने तो आज हमें अपनी मौत याद रहती। दुख की बात यह कि हम हज और उमरे करते ही जाते हैं लेकिन हम इस रूह को जिंदा नहीं कर पाते। फरमाया ऐसे लोग जो रूह के बगैर नेकियां करते हैं उनका हाल क्या होता है? तो मिनन नासी में युजादिलु फिल्लाह ही बिगैरी इल्म, बास लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं और हर शैताने सरकश की पैरवी करने लगते हैं, हालांकि इसके तो नसीब में यही लिखा हुआ है कि जो इसको दोस्त बनाएगा वो इसको गुमराह करके छोड़ेगा और अजाब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबे मिनल बास, लोगो अगर तुम्हें जिंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़े करें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। सच है ना, मट्टी से शुरू हुए और कब्र की मट्टी में जाके हमारा लाइफ साइकिल पूरा हुआ, चले थे वहीं से जहां वहीं पहुंच गए। ये है मेरा आपका अंजाम। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस बीच के मरहलों को हम सही तरह से गुजार सके। अब मिसाल दी गई कि देखो दुनिया से जाने के बाद दोबारा उठना क्यों ना मुमकिन लगता है, ये मंजर तो तुम रोज देखते हो, हर तरफ देखते हो। कैसे? और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने इस पर मीं बरसाया कि यकयक वो भभक उठी और फूल गई और इसने हर किस्म के खुशनुमा मनाजिर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, वो मर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है। और ये इस बात की भी दलील है कि क़यामत की घड़ी आ कर रहेगी और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर इस रोज लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके। यानी खिजा आती है तो सब पत्ते उतर जाते हैं, फिर बहार में कहाँ से आते हैं? जब फसलें कटती हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, फिर एक बीज से फसल कैसे उगती है? इसी तरह तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे। बाज ऐसे लोग भी हैं जो किसी इल्म और हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। हाईलाइट कीजिए, ये किरदार आपको अब ढूंढने ज्यादा मुश्किल नहीं दिखेंगे। आता जाता खाक नहीं और दीन के नाम पे पैसे और मनाजरे और तबसरे करने के लिए वो लोगों के सामने पेश कर दिए जाते हैं। दुआ कीजिए बेइल्म उलमा से अल्लाह हमें बचा दे, ना जिनके अंदर खशियत है ना जिनको कुरान सुन्नत का पता है, और आके अपने आप साथ लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी हिदायत दे। कितनी एनर्जी लगती है, कितना पैसा लगता है ऐसे लोगों को प्रमोट करने में, लेकिन इनके पास अगर खुदा खौफी होती तो कभी अल्लाह के अहकामात को इस तरह तोड़ मोड़ के आज के दौर में ये और कल के दौर में ये करके सुन्नतों को जाया ना कर देते। ऐसा करते क्यों है? ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाए, और ऐसे लोगों को कवरेज बड़ा मिलता है। मीडिया हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करेगा, इल्ला माशाल्लाह। आज तो ये भी लफ्ज बहुत एक्सपैंड हो गया, माशाल्लाह मुसलमानों ने अपने मीडियाज कायम कर लिए। लेकिन याद रखिए कि लोगों को दिखाने के लिए नॉन मुस्लिम और गैर इस्लामी यानी इस्लाम को ना पसंद करने वाले मुसलमानों ने हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे आके लोगों को थपकियां दे, कुछ भी करो देखना बच जाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग लोगों से को इस तरह क्यों करते हैं, ताकि वो अल्लाह का दीन छोड़े। कुर्बानी वाला दीन वो कभी पेश नहीं करेंगे, वो हमेशा रुख्सतों वाला दीन पेश करेंगे। फरमाया ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क्यामत के रोज हम इनको इस आग के साथ का मजा चिखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में कोई ऐसा भी है, हाईलाइट कीजिए और इसके सामने तो आईना रखना पड़ेगा। यह आयत हकीकत में मुझे और आपको आईना दिखाएगी। क्या लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है? अगर फायदा हो तो मुतमईन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। फायदों का हरीस, एजिस ऑफ दी रिलीजन, किनारों पे क्यों रहा? दीन में आने में फायदा हुआ तो कमरे के अंदर आ जाएंगे, और दीन ने कुर्बानी मांगी हिजरत मांगी तो बाहर भाग जाएंगे। सोचा क्या था कि दुनिया भी मिल जाए आखरत भी मिल जाए, हुआ क्या, इसकी दुनिया भी गई और आखरत भी। ये है सरीख इस खसारा। तो पीछे क्या मशवरा था आपको मुझे सूरह बकरा में, या अय्युहल लजीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाँ सूरत मायदा में ये कहा गया था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, लेकिन इसके बावजूद लोगों को आधा दीन अच्छा लगता है। किनारों का दीन क्यों अच्छा लगता है? लोगों को कुछ इंश्योरेंस चाहिए इस बात की कि हम थोड़े से दुनिया में रहें, थोड़े से दीन में आए, ताकि जरा दीन की वजह से कहीं कोई नुकसान हुआ, कोई बच्ची का रिश्ता ना हुआ, जॉब ड्यूटी जॉब ना मिली तो हम बाहर तो जा सके। देखिए आप सब इधर ही बड़े पुरसकून माहौल में बैठे हैं ना, हर एक अपनी जगह पे बैठे तो मुतमईन है। अगर आप सब जो आगे बैठे हैं इधर बैठे हैं, इधर आप यहां के वो दरवाजे के पास बैठते, नुकसान क्या होता? सोचते क्या, चलो देखते हैं क्या चलता है आज अंदर, देखते हैं कितना को मजा आता है, नींद आनी है तो बाहर बैठ के सो लेते हैं, इनके पास नहीं बैठते, कुछ और काम करना है, कोई और तैयारी करनी है, बाहर बैठ के कर लेते हैं, कानों से सुनते रहेंगे तो बाहर जाएंगे ना। आप किनारों पे गए, अब हुआ क्या? नंबर एक आपका एक कान बाहर है एक अंदर है, बाहर का शोर भी आएगा अंदर का भी आवाजें आएंगी, फोकस नहीं रहेंगे। दूसरी बात है दो कश्तियों का सवार तो हमेशा ही डूबता है। फिर तीसरी बात क्या होगी कि आपको किनारे पे खड़ा देखकर कोई और सिस्टर्स अगर बाहर से आ रही थी और वो देखेंगी, वो सोचेंगी रूम फुल हो गया, तो वो आपको देखकर पलट जाएंगी। बस ये तीन बातें याद रखें, आज के वो मुसलमान जो दीन को सिर्फ एजिस पे ले रहे हैं वो दूसरों को इस्लाम में आने से रोक रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं इस्लाम ऐसा दीन ही नहीं जिसको अमल करो, अंदर आइए। जितना अंदर आएंगे आप सब इस चीज के गवाह हैं कि आप जितना सामने बैठते हैं जितना क्लोज बैठते हैं उतना आई कॉन्टेक्ट होता है, उतना ज्यादा मजा आता है ना। दीन का असल हुसन अंदर आने में, आधा दीन आधा कम, एक दीन की बात है दूसरी बेदीनी की बात कभी खैर नहीं होगी। मुझे हैरत उस वक्त होती है जब लोग एक तरफ दीन की नुमाइंदगी भी करते हैं और एक तरफ सूद और हराम की चीजों में भी पड़े रहते हैं, उनको सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, वही मिसाल पीछे दी थी आज फिर दे देती हूँ कि पिज्जे का सबसे टेस्टी पार्ट कौन सा होता है? मिडल पार्ट, सबसे ज्यादा चीजी सॉफ्ट और भरा हुआ। किनारे तो खुश्क लगते हैं, बच्चे तो किनारे खाते ही नहीं है। जो लोग आधा दीन लाते हैं ना उनको दीन खुश्क लगता है, ड्राई लगता है, टू मच, कोई खुशी नहीं इनकी जिंदगी में, कोई फन नहीं, कोई पार्टी नहीं, निस नहीं, दिस दैट नहीं, वो नहीं है। लेकिन आप दीन के अंदर आते हैं आपको पता चलता है हर दिन पार्टी है, हर रात आपकी कैसी और हर दिन कैसा है। इतनी सोशलाइजिंग जो दीन में आके होती है, बताइए कभी वैसे हुई? कभी वैसे आप किसी के घर इतने आराम से जाते हैं जितना आप रमजान में अल्लाह के घरों में आके सोशलाइजिंग करते हैं और अल्लाह के रास्तों में आकर दीन के नाम पे एक दूसरे के घरों में जाते हैं? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें किनारों से अंदर ले आए। किनारों वाले डूबते हैं, कश्ती डूबेगी ना कौन डूबेगा? इमेजिन कीजिए बोट है, अंदर मिडल वाली लाइन में लोग बैठ गए, कुछ इधर थे कुछ इधर, जरा सी कश्ती डोलेगी ना पहले इधर वाले गिरेंगे पानी में फिर इधर वाले गिरेंगे, अंदर वाला हमेशा बचता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पीछे देखा, आपको क्या लगता है इब्राहिम किनारों वाले थे? याद रखिए हमेशा साबिकून अल अव्वलून मिडल में होंगे, दीन के सिक्योर्ड लोग होते हैं। तो किसका दिल करता है कि फिर बीच के रहें थोड़े रहें? वो कहते नहीं बस तुम बहुत ज्यादा ना करो, थोड़े बन जाओ, मीडियोकर्स बन जाओ, अच्छा थोड़े सोच लो, सोच लो तो फिर जिसको ऊपर बढ़ना है उसको तो बहुत ज्यादा दीन के अंदर आना पड़ेगा, और अल्लाह ताला हमें जितना ले आए हम उससे भी राजी हैं और उससे भी ज्यादा आने पर आ जाए। अब इसके बाद देखिए शिर्क की एक मिसाल दी जा रही है, फरमाया ऐसा शख्स क्या करता है, यदु मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु वला यनफअहू, फिर वो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारता है जो ना इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है गुमराही की इंतहा, वो इनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफे से करीब तर है। बदतरीन है इसका मौला और बदतरीन है इसका रफीक। इसके बरक्स अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। दुआ कर ले अपने लिए कि अल्लाह ईमान के साथ नेक अमल की तौफीक दे दे। क्या करेगा अल्लाह ताला, दाखिल करेगा ऐसे लोगों को ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ करता है। और अगर ऐसा नहीं, मन का न यजुन्नसुरहुल्लाहुफिद्दुनिया वलआखिरा, जो शख्स एक गुमान रखता है कि अल्लाह दुनिया और आखरत में इसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान तक पहुंचकर शिगाफ लगाए, फिर देख ले कि इसकी तदबीर कोई इसी चीज को रद्द कर सकती है जो इसको नागवार है। दो तरह से ही आयत, अल्लाह के नबी की अल्लाह मदद नहीं करेगा, जो शख्स ये सोचता है जाके वो फंदा लगा के खुद को मार ले या वही का सिलसिला ऊपर से रोक ले। और मैं आज के दौर में इस आयत के ऊपर आके यही सोचती हूँ कि वो लोग जो आज मुसलमानों में नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलना, ये हमेशा के खराब, ये तो टूट गए, ये डूब गए, तो उसका यही नसीब होना चाहिए। अल्लाह कहते मैं मुसलमानों की मदद करूंगा, इस्लाम को इज्जत दूंगा, जिसको नहीं इंतजार होता जाए फिर वो अपने आप को दुनिया से दूर कर दे। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई हुए और नसारा और मजूसी और जिन लोगों ने शिर्क किए, इन सब के दरमियान अल्लाह ताला क़यामत के रोज फैसला करेगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाती व मन फिल अर्ध, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह के आगे सरबसजूद है वो सब जो आसमानों में और जो जमीन में, सूरज और चांद और तारे, पहाड़ दरख्त और जानवर, और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग जो भी अजाब के मुस्तक हो चुके, और जिसे अल्लाह जलील कर दे इसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं, और अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। आगे शिर्क को समझने की एक मिसाल है, जरा गौर से सुनिएगा। हाजानी हसमानी, ये दो फरीक है जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। कपड़ा कट जाता है ना तो सीना मुश्किल नहीं होता, यानी जहन्नम इनके लिए बिल्कुल रेडी है, टेलर मेड जहन्नम है इनके लिए। कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े पहनाए जाएंगे इनको। फिर उस पे युसब्बु मिन फौक रूसिहिमुल हमीम, फिर इनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, दूसरा अज़ाब। फिर तीसरा युसखरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, जिससे इनकी खाले ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे, फिर भी काफी नहीं है। वलहुम मकामियु मिन हदीद, फिर इनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्स होंगे, हंटर मारा जाएगा ऊपर से इनको। फिर क्या होगा, कुल्लमा अरादु अन यखरुजु मिन्हा मिन गम्मिन उईदु फीहा, फिर जब कभी घबरा कर वो जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर इसी में धकेल दिए जाएंगे, और कहा जाएगा वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक, चखो अब जलने की सजा का मजा। 3 सेकंड तक दुआ करें अपने लिए और सबके लिए, इंसानियत के लिए तड़पे कि अल्लाह किसी को इस जहन्नुम में ना डालना, अल्लाह हमारी गफलतों की वजह से लोग इस जहन्नुम का शिकार ना हो जाए, अल्लाह हमें इतना खूबसूरत कलाम शेयर करने वाला बना दे ताकि लोग इस जहन्नुम से बचे। कोई बर्दाश्त कर सकता है ये सजाएं? कभी दुनिया में उंगली जली हो तो जरा देखिए क्या तकलीफ है, कभी किसी हॉस्पिटल के जाके जरा वो वार्ड को देखिए जहां जली हुई लाशें रखी जाती है और जले हुए लोग कपड़े नहीं पहन सकते, नीचे से बेड सोल है, कपड़ा जिस्म पे लगता है तो चीखें निकलती हैं। अल्लाह कहते हैं एक खाल गले की, फिर दूसरी, फिर जिस्म की अंतड़ियां, और दुनिया में तो मौत आ जाती है ना, ये भी रहमत है, वहां तो मौत भी नहीं आएगी। क्या बनेगा उस वक्त, क्या इन खूबसूरत चेहरों पे हमें रहम नहीं आता? क्या हम नहीं चाहते हम जल्दी से अच्छे से मुसलमान बन जाए ताकि हम दूसरों को भी इस्लाम सिखाएं, हम जल्दी से अपना इस कुरान पढ़ें सीखें ताकि दूसरों को भी बचाएं? और कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आपके जरिए से कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम होता है और कोई अनप्रैक्टिकल मुस्लिम प्रैक्टिस करना शुरू होता है, वो खुशी आपको जिंदा कर देती है। जब लोग आपको आके कहते हैं आपकी बात सुन के मैंने खुद को चेंज किया, आपके इस बात सुनकर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, वो खुशी बहुत बड़ी है। अल्लाह हम सबको ऐसी खुशियां अता फरमाए। अब आप डर गए तो अल्लाह ने आपको खुशखबरियां भी दी, कैसे, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नात, और जो लोग दूसरी तरफ वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और इनके लिबास रेशम के होंगे। लग रहा है आपके ईद के जोड़े की तैयारियां, ज्वेलरी के साथ और जड़ाओ कंगन। वो ज्वेलरी खूबसूरत लगती है जिसमें स्टोन्स भी हों, चाहे वो सस्ती हो महंगी हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं स्टोन वाला गोल्ड चाहिए, उसमें खूबसूरत है। अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में ये चीजें तैयार की हैं। क्यों? कि आप आज दुनिया में किस तरह बुलाए जा रहे हैं। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। वखुदू इलत तय्यिबी मिनल कौल, इनको पाकीजा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई और इन्हें अल्लाह जो तारीफों से मुत्तसिफ है उसका रास्ता दिखाया गया। यानी आपको सबीलुल जन्ना का रास्ता अल्लाह दिखा रहा है जिसके बाद आप अल्लाह की तरफ पहुंचेंगे। आप इधर अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, उधर आपके लिए अल्लाह जेवरात बनाना शुरू करवा देता है। अल्लाह ताला में इस तय्यब कौल को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल लजीना कफर व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम, जिन लोगों ने कुफर किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और मस्जिद हराम की जियारत के रास्ते में रुकावट है, जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है जिसमें मुकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, इनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तक है। इस मस्जिद हराम में भी जो रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, इसे हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। मिलती है।